So I'm going to talk about the 18th vow. The 18th vow says, I will lead a life based on the principles of Prajna, Shil and Karuna.
आज के इस अवसर पर मैं आपको उस 22 प्रतिज्ञा में से जो 18वीं जो प्रतिज्ञा है उसके बारे में मैं कुछ जानकारी आपको दूंगा. उसमें यह कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रज्ञा, शील और करुणा इन तीन तत्वों के अनुसार मैं अपना जीवन जीने का प्रयास करूंगा.
So, the order of these three is quite significant.
तो ये तीनों का जो क्रम है, सबसे पहले प्रज्ञा, फिर बाद में शील और फिर बाद में करुणा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा साहब ने दी है.
As I give my talk, you will understand why it starts with prajna and how that goes to shil and why shil goes on to karuna.
मेरे इस प्रवचन में से आपको ये बात समझ में आएगी कि प्रज्ञा पहले क्यों आती है, फिर शील कैसे आता है और फिर करुणा कैसे आता है.
So we start with prajna because all spiritual life, that's real spiritual life, starts with some new understanding.
तो हम लोग प्रज्ञा से शुरुआत करेंगे क्योंकि आध्यात्मिक जीवन जो होता है, आंतरिक विकास का जो जीवन होता है, उसकी शुरुआत ही यानी हमारी कुछ समझदारी से होती है. इसलिए प्रज्ञा वह बात है.
Buddhism doesn't start with some sort of blind belief in a god. It starts with understanding.
बुद्ध धम्म अंधश्रद्धा से शुरुआत नहीं होता. जैसे ईश्वर पर विश्वास रखना यह अंधश्रद्धा है. बुद्ध धम्म इसे नहीं मानता. बुद्ध धम्म समझदारी को मानता है, प्रज्ञा को मानता है.
It's an understanding that's based on your own experience and that you can test from your own experience.
तो प्रज्ञा जो होती है, समझ जो होती है, हमारे अपने अनुभव से आती है. उसका आधार यानी हमारा स्वयं का अनुभव है.
Now, as we continue to practice Buddhism, our prajna gets better, gets stronger.
और जैसे जैसे हम लोग बुद्ध धम्म का आचरण करते रहते हैं, उस प्रकार से हमारी प्रज्ञा जो है गहराई में जाती है और उच्च स्तर पर विकसित होती है.
It's at first as if we're looking through some thick clouds, some fog, at something very beautiful, the three jewels. But as we continue to practice, the fog becomes thinner. We can see it more clearly.
तो सबसे शुरुआत प्रज्ञा की ऐसी होती है जैसे कि मान लो बहुत सारा कोहरा है और कोहरे के भीतर में कुछ यानी प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है, तो यानी टिमटिमाता हुआ प्रकाश दिखाई देता है कोहरे के कारण. इसी प्रकार से प्रज्ञा होती है. जब आप आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करते हैं तो ऐसे ही कोहरे के जैसा थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे प्रज्ञा बढ़ती है तो त्रिरत्न को आप सही अर्थों में देखने लगते हैं.
For many people, their first understanding is an understanding that we'll never get complete happiness just from reorganizing the circumstances of our life.
तो सबसे पहली समझदारी की बात है जो समझ लेना है वह ये, इस भौतिक दुनिया की कोई भी बातें आपने फिर से उसकी रचना की तो भी उससे कोई आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी.
It might be an understanding that if we just think about ourselves and our family in a selfish way, we won't become more happy, we'll become less happy.
तो मान लो कि हम लोग अपने आप को बहुत मर्यादित कर लिए, अपने परिवार तक सीमित कर लिए, उससे भी हम बहुत ज्यादा सुखी और आनंदित हो गए, ऐसी बात नहीं है.
It might be an understanding that we are changing and that life is very short and very precious.
ये भी बात है कि यानी हमारा मनुष्य जीवन जो है वह काफी अनमोल है, काफी महत्वपूर्ण है और छोटा है.
I'm already 60 years old.
अभी मैं 60 साल का हूँ.
And I've been practicing for most of my life.
और ज्यादा से ज्यादा जीवन मैं बुद्ध धम्म का आचरण कर रहा हूँ.
So luckily I've been able to talk to a lot of people who've converted to Buddhism.
इसलिए बहुत सारे लोग जिन्होंने बौद्ध धम्म लिया है, ऐसे लोगों के साथ में मैं बहुत अच्छा वार्तालाप कर सकता हूँ क्योंकि मेरा अपना गहरा अनुभव है.
Both in India and the West, many people say it's a huge relief when they discover Buddhism.
भारत में और पश्चिम की दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ, उन लोगों का कहना है कि वे जब बुद्ध धम्म के संपर्क में आए तब जाके सही अर्थों में उन्हें शांति और सुख का अनुभव मिलने लगा.
It's a new understanding and from that point on the person knows what they're trying to do.
ये एक नई जैसे समझ या समझदारी हमें प्राप्त होती है जहाँ से हम सही अर्थों में अपने मनुष्य जीवन को समझने लगते हैं।
I suspect in the case of Baba Sahab, he had his new understanding many years before his formal Dikshabhumi in 1956.
मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ धर्मांतर 1956 में बाबा साहब ने किया लेकिन उसके कई साल पहले से बाबा साहब जानते थे सही अर्थों में मनुष्य जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए।
Both in India and in the West, I've known people who say that when their life had no meaning before they discovered something like the three jewels, they felt life was so bad that they became alcoholic.
ऐसे बहुत सारे लोगों से भारत में और विदेश में मैं मिला हूँ जो लोग बुद्ध धम्म के संपर्क में आए हैं और आज आनंदित है खुश है वे कहते हैं कि बुद्ध धम्म के संपर्क में आने से पहले हमारा जीवन हमने व्यर्थ बिताए वह उसमें किसी भी प्रकार की संतुष्टि आनंद और सुख नहीं था लेकिन बुद्ध धम्म ने आज उन्हें उनके मनुष्य जीवन को बहुत अच्छा उद्देश्य दिया है खुशियाँ दी है।
Some people get their new understanding just by thinking about the life of Baba Sahab or the Buddha or some great saint and thinking how valuable those qualities are.
बहुत सारे लोग बाबा साहब की तरफ देखते हैं भगवान बुद्ध की तरफ देखते हैं और भी जो संत है संतों की तरफ देखते हैं और उनके अनुसार अपना जीवन कैसे अच्छा बने इसके लिए सोचते हैं।
And a few people who are used to reading a lot of books may read some Buddha scriptures and get their new understanding that way.
ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बुद्ध धम्म के ग्रंथ पढ़ते हैं और ग्रंथ पढ़कर एक अपनी प्रज्ञा का विकास करने का प्रयास करते हैं मनुष्य जीवन का उद्देश्य खोजने का प्रयास करते हैं।
Now to practice Buddhism, to continue your Buddhist life, you don't need to read a lot of books.
बुद्ध धम्म का आचरण करने के लिए गहराई में जाने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहिए।
You just need to understand a few of the basic teachings of the Buddha.
हमें ज्यादा आवश्यक है भगवान बुद्ध की कुछ मूलभूत शिक्षाएं यानी अच्छी तरह से समझ लेने की।
For instance, the teaching of anicca, impermanence.
जैसे कि उदाहरण के तौर पर अनित्यता की जो शिक्षा है वह समझ लेने की जरूरत है।
The teaching that you can change the quality of your mind by practicing Buddhism.
बौद्ध धम्म का आचरण करते हुए हमारे मन को हम कैसे बदल सकते हैं उसकी शिक्षा हम समझ सकते हैं।
And of course we need to understand the Panchashila very carefully.
उसी के साथ साथ पंचशील का जीवन में आचरण कैसे करना ये भी हम समझ सकते हैं।
And it's also very helpful to understand about the life of the Buddha as well as about Baba Sahab.
और इसके साथ साथ तथागत गौतम बुद्ध का जीवन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जीवन हम समझने का प्रयास करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।
So, some people they like to keep reading books and that can be a good thing, but it's not essential.
बहुत सारे लोग मात्र किताबें पढ़ते रहते हैं और आचरण की तरफ नहीं मुड़ते हैं तो इस प्रकार से मात्र किताबें पढ़ना उतना आवश्यक नहीं है।
But when we understand the very core teachings of Buddhism that all Buddhist schools agree with, we must think about them in our own mind.
लेकिन जो बौद्ध धम्म के बहुत सारे जो संप्रदाय हैं, सभी संप्रदायों में जिस शिक्षाओं को सभी संप्रदाय मानते हैं, ऐसी शिक्षाओं के ऊपर अगर हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, उससे हमें काफी लाभ हो सकता है।
I'd like you to think about them so that if anybody asked you about them, you could answer their questions.
मुझे लगता है कि आप भी इस पर सोचिए और किसी ने आपको बुद्ध धम्म के ऊपर सवाल पूछा तो आप उसको उसका जवाब देने के लिए सक्षम बन सकते हैं।
And I'd like you to think about whether what is said by the Buddha is true in your experience.
और उसके साथ साथ अपने अनुभव से जानने का प्रयास कीजिए कि भगवान बुद्ध ने ये शिक्षा इस प्रकार से कही है यही सच है या और भी कुछ बात है।
Now, as we start to think about more the Buddhist teachings more, like the teaching of impermanence, it changes the way we want to live. It changes the way our mind works.
जब हम भगवान बुद्ध की अनित्यता की शिक्षा को सही अर्थों में समझने लगते हैं, तब हमारा मनुष्य जीवन बदलने लगता है। जो कुछ भी हमारा पुराना मनुष्य जीवन था, उससे नए तरीके से हम जीने लगते हैं।
And of course, one of the changes that takes place is that we will want to try to practice Shīla.
और इसमें जो परिवर्तन आता है वहाँ से दिखाई देता है कि हमें शील का आचरण करना पड़ता है।
Because we know this is important for our happiness.
क्योंकि हमारे जीवन में आनंद के लिए खुशियों के लिए यानी पंचशील की मदद होती है
एंड फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द होल सोसाइटी
और उसी के साथ साथ पूरे समाज की खुशी के लिए शील की मदद होती है
इट्स नेसेसरी टू प्रैक्टिस शील इफ वी आर गोइंग टू टेक बुद्धिज्म सीरियसली
अगर बौद्ध धर्म को गंभीरता से लेना है तो आपको शील का आचरण करना ही पड़ेगा
नाउ बिफोर आई गो ऑन टू शील द सेकंड ऑफ द थ्री प्रिंसिपल्स हैव यू गॉट एनी क्वेश्चंस
तो शील की तरफ मुड़ने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपके भीतर में कोई सवाल है फिलहाल प्रज्ञा को लेकर
You can ask questions about what I've said or about any other part of Buddhism.
जितना उन्होंने बताया है उसके ऊपर आप कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं या और भी कोई सवाल होगा बुद्ध धर्म को लेकर तो पूछ सकते हैं
Okay, all right. So now, if you've got no questions at this point, I'll go on to talk about Shiel. You could say, what happens if you don't practice Shiel?
हम लोग देख सकते हैं, मान लो Shiel का आचरण नहीं करते हैं तो क्या होता है?
We know if you do practice Shiel, your mind becomes stronger and you become happier.
हम ये भी जानते हैं कि Shiel का आचरण करने से हमारा मन मजबूत होता है, बलवान होता है, सशक्त होता है।
Well, if somebody just ignores Shiel and just tries to live selfishly, they become very tormented.
जो लोग Shiel की तरफ ध्यान नहीं देते, प्राणियों के जैसा अपन जीवन जीते हैं, उनके जीवन में बहुत यानी दुख आता है, बहुत संकटों का सामना करना पड़ता है।
Now, luckily, the principles of the Panchashil are quite easy to understand.
और ये बहुत ही अच्छी बात है, पंचशील जो है, बहुत ही आसान ऐसी शिक्षा है, जिसे हम बहुत सरलता से समझ सकते हैं।
So, firstly, not acting in a violent way, not acting in an aggressive way.
पहली बात हम समझ लेते हैं, पहला शील जो है, किसी भी तरह से मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, आक्रामक तरीके से मैं पेश नहीं आऊँगा।
Secondly, not stealing.
दूसरा शील है मैं चोरी नहीं करूंगा
Thirdly, not, doing sexual misconduct.
तीसरा शील है मैं व्यभिचार नहीं करूंगा
Not lying.
चौथा शील है मैं झूठ नहीं बोलूंगा
And not taking alcohol or other intoxicants.
और पांचवा शील है नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करूंगा
Now, if we do a lot of gambling, that's also a type of addiction, so that's also forbidden under the fifth precept.
तो पांचवा जो शील है मान लो हम बहुत जबरदस्त यानी जुआ खेलने के शिकार हुए हैं तो वो भी पांचवे शील में नहीं आता है
सो योर लाइफ माई लाइफ इज लाइक अ जर्नी स्टार्टिंग एट बर्थ गोइंग टुवर्ड्स डेथ
हम सभी का जीवन मेरा जीवन आपका जीवन जन्म से लेकर मृत्यु की दिशा में हम लोग सफर कर रहे हैं यह हमारा जर्नी है
इफ वी डोंट हैव द थ्री जूल्स आवर जर्नी इज Just going round in circles.
अगर हमारे पास में बुद्ध धम्म संघ ये तीन रत्न नहीं है तो हमारा यह जो जीवन है जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसा गोल गोल यानी घूमते रहेगा
But if we've got the three jewels, we've got a direction. We know where we're trying to go.
लेकिन हमारे पास अगर तीन रत्न है बुद्ध धम्म संघ तो उससे हमारे मनुष्य जीवन को सही अर्थों में दिशा मिलती है
But on our journey, we still need a map, and the map is the Panchashil.
लेकिन हमारे जो हमारा जो ये सफर है, उस सफर में हमें नक्शे की आवश्यकता होती है, और रास्ता पता रहना जरूरी है। तो पंचशील एक प्रकार से रास्ता है अच्छा जीवन जीने का।
It's good to think a lot about each of the five of the Panchashil.
ये बहुत ही अच्छी बात होगी कि पंचशील के बारे में थोड़ा थोड़ा हर शील के बारे में हम समझ ले जान ले
I said that the Panchashil was quite simple, and it's quite simple just to chant it and to say what the five are.
तो पंचशील जो है पंचशील जो है वह यानी कहना बोलना और उसके बारे में बताना यह सहज है आसान है
But of course, life is not always simple.
लेकिन हमारा मनुष्य जीवन इतना आसान और सरल नहीं है.
Sometimes you're thinking of doing something and you can see some benefits and some bad effects.
कुछ समय हम सोचते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए लेकिन प्रत्यक्ष व्यवहारिक जीवन में दूसरी बातें घटती हैं और हम लोग दुखी होते हैं.
For I'll give you just one simple example.
मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ.
Maybe you think it would be nice to go on a retreat, a shibir.
अब आपने मान लो सोचा कि मैं अभी शिविर में जाऊंगा.
You know it would be good benefit for your mind and you want to learn to meditate.
आप ये जानते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि मैं शिविर में जाके ध्यान करूंगा जिससे मुझे अच्छा लाभ होगा.
But perhaps the shibir is a scheduled for a busy time when you should really be doing a lot of work.
और शिविर का समय ऐसे समय में है जहां आपकी भी काफी व्यस्तता है, आपके पास बहुत सारे काम है, ऐसे ही समय में शिविर भी है.
And maybe if you go on shibir at that time, other people will have to work even more hard.
और जब आप शिविर को जाएंगे उस समय बहुत ज्यादा काम करने की आपको आवश्यकता है.
So you have to decide.
इस ऐसे समय में आपको यानी चुनना पड़ता है काम में व्यस्त रहना या फिर शिविर में जाना.
In Buddhism we don't ask some god to decide, we ask you to decide.
बौद्ध धर्म में हमारे लिए निर्णय लेने के लिए हम किसी भगवान को नहीं पूछते हैं, आपको स्वयं को तय करना पड़ता है मैंने क्या करना चाहिए.
So you have to weigh up the good things and the bad things.
तो आपके सामने चीजें होती है, अच्छाई भी आपके सामने है, बुराई भी आपके सामने है, आपको चुनना पड़ता है कौन सा कर्म करें.
But of course, in Buddhism, we don't just have books and the ideal of the Buddha. We also have spiritual friends.
तो बौद्ध धर्म में यानी किताब और आदर्शों के सिवा बहुत ही अच्छे मित्र हमारे साथ में होते हैं, बहुत ही अच्छे मित्र भी हमें मदद करते हैं.
And this is what we want to create more and more of in Saraskela, more of people who are following Buddhism together as spiritual friends.
और यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस गांव से आप लोग हैं उस गांव से यानी ज्यादा से ज्यादा आपस में अगर आपकी मित्रता बढ़ती है, आध्यात्मिक आप मित्र एक दूसरे के बनते हैं, तो आप सही अर्थों में एक दूसरे को मदद कर पाएंगे.
And then if you've got an ethical problem and you're wondering what to do, well of course you can talk about it with a friend.
और जब कभी भी आपको कुछ समस्याएं आती हैं, तो आप अपने आध्यात्मिक दोस्तों से जाके चर्चा कर सकते हैं और उससे लाभान्वित हो सकते हैं.
But you still have to make the final decision.
लेकिन अंततः आपको स्वयं को अपने जीवन का निर्णय लेना पड़ता है.
Now, some people have already heard many talks on Shil.
अब बहुत सारे लोगों ने शील के ऊपर सुना होगा.
And some people say, well, I'm doing okay, I don't need to make any more effort with my Shil.
और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है और मैं तो अच्छे से शीलों का आचरण कर रहा हूँ, मुझे और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है.
But the truth is that only someone who's very spiritually developed is so advanced.
लेकिन सच्चाई ये है कि मतलब हमने शील को अच्छी तरह से समझ लेकर गहराई में जाके आचरण करने की आवश्यकता होती है.
Now, Baba Sahab, his level of shield was very high.
बाबा साहब का जो शील है वह बहुत ही उच्च स्तर का था.
But For most people, if they think their shield is okay, it's because they're not aware of the mistakes they're making.
बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि उनका शील बहुत ही अच्छा है, उनके साथ में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी.
Especially, we need to be aware of what's going on in our minds.
खास करके हमारे मन में क्या चल रहा है इसके बारे में हमें जागृति होना आवश्यक है.
Because if we're thinking a lot of hateful thoughts, even that isn't very good.
अगर हम मान लो कि बहुत ज्यादा द्वेषपूर्ण विचार करते हैं तो उसका भी परिणाम हमारे मन पर अच्छा नहीं होगा.
And we need to be so aware that before we say something bad, we're conscious of it and we decide not to say it.
हमने इतना जागरूक रहने की आवश्यकता है कि हमारे मन में जो भी सूक्ष्म विचार चल रहे हैं उसके हमारे मन पर क्या परिणाम होंगे, और ऐसे बुरे विचारों को बाजू में रखते हुए अच्छे काम करने के लिए हमने जागृति बरतना जरूरी है.
For instance, we might be a bit angry and we're about to use some swear words that won't help the situation.
अब मान लो कि हम बहुत गुस्से में हैं और गुस्से में हम लोग गलत शब्दों का, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन शब्दों से कोई यानी सुलह होती है, रास्ता निकलता है, ऐसा नहीं है.
So if you take Baba Sahab seriously, if you take Buddhism seriously, you'll try to be more aware and not say those bad things.
अगर आप बाबा साहब को सही अर्थों में समझते हैं, भगवान बुद्ध को सही अर्थों में समझते हैं, तो आप इस प्रकार की गलत परिस्थितियों में अपने आप को न डालते हुए वहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे.
Just think how many people were aggressive towards Baba Sahab, how many people disappointed him.
आप सोचिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में कई लोगों ने बाबा साहब पर आरोप किए, बाबा साहब के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किए, लेकिन बाबा साहब ने कभी उसके तरफ ध्यान नहीं दिया.
He never advocated violence.
उन्होंने कभी हिंसा करने के लिए अपने सहकारियों को प्रेरित नहीं किया.
He always acted with dignity.
उन्होंने हर समय यानी सम्मान के साथ में पेश आने का प्रयास किया.
And of course, by keeping to the shield, he achieved much more than he would have if he'd acted with violence.
और खास करके यानी शील का आचरण करते हुए बाबा साहब ने अपना जो सम्मान जो है उसे कायम किया. बाबा साहब कभी भी आक्रामक नहीं हुए, बाबा साहब ने कभी हिंसा को प्रोत्साहन नहीं दिया.
Now it's even difficult to tell the truth all the time.
और ये भी सच बात है कि हर समय में सच्चाई बताना कठिन होता है.
I'll give you an example.
मैं एक उदाहरण आपको दूंगा.
A little while ago, I was touring another state of India, giving some Buddhist talks in that state.
कुछ समय पहले की बात है, भारत में ही एक अन्य प्रांत में मैं धम्म दौरे पर था, प्रवचन देने के लिए वहाँ घूम रहा था.
I'm not going to tell you which state because then you might guess which people were involved.
मैं आपको उस प्रांत का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि हो सकता है आपके मित्र भी वहाँ रहेंगे और आप उनसे पूछेंगे.
So we had arranged to arrive at a certain place for a big Buddhist meeting.
तो मुझे बताया गया कि एक बहुत बड़ी सभा होने वाली है और वहाँ हमें जाना है और वहाँ प्रवचन देना है.
And of course, as so often happens in India, we were terribly, terribly late.
और जैसे कि आम तौर पे भारत में हर जगह यह होता है, हम लोग वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो गई हमें.
So I was with this person in the car. And he wanted to persuade the organizers to keep the people together and not let them go.
और मैं सुन रहा था, कार में बैठा था, मोबाइल पे मेरे साथ में जो लोग थे यानी जिन्होंने प्रवचन का आयोजन किया था वो बात कर रहे थे. वो उधर जहाँ सभा थी वहाँ लोगों को बता रहे थे कि भाई कुछ भी करिए लेकिन लोगों को जमा करके रखिए ताकि प्रवचन वे सुने.
So we were in the car and there was a signpost to say that it was about 30 kilometers before we got to the city.
ये बात जब हो रही थी उस समय मैंने कार की खिड़की से बाहर देखा, सभा की जगह जाने का जो यानी फासला जो था लगभग 30 किलोमीटर का और बाकी था.
Now I don't know much Hindi, but I know that when he phoned up the organizers, he said, "Oh, we're nearly in the city. We're just 8 kilometers out."
मैं हिंदी ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन आप क्या बात कर रहे हैं ये जरूर समझ लेता हूँ. वो जो यानी प्रवचन का आयोजक था वो मोबाइल पे दूसरी तरफ बता रहा था कि हम शहर में हैं और मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है.
I know why he said 8 kilometers, not 20 or 30, but it still would have been better to tell the truth.
मैं ये जानता हूँ कि वो आयोजक ऐसा क्यों कह रहा था, यानी 30 किलोमीटर की दूरी पर थे हम, लेकिन वो बता रहा था कि हम 8 किलोमीटर की दूरी पर हैं. इस पर से आपको पता चलेगा कि कभी कभी सच्चाई को बताना कितना कठिन होता है.
So it's not easy.
ये आसान बात नहीं है.
Actually, this is something Baba Sahib said after his conversion. It won't be easy.
यही बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी धर्मांतर के समय बताई कि आचरण करना यानी आसान नहीं है, यह कठिन है.
And sometimes it's not easy when we're being criticized.
और ऐसे समय जब हमारे ऊपर कुछ लोग यानी दोषारोपण करते हैं, आरोप करते हैं, उस समय भी बहुत कठिन जाता है.
Sometimes when we're being criticized, we feel very angry and we feel like saying something aggressive back in return.
जब हमारे ऊपर में आरोप होते हैं, प्रत्यारोपण होता है, दोषारोपण होता है, तब हम काफी आक्रामक बन जाते हैं और ऐसा लगता है कि मार देना चाहिए.
Or sometimes somebody says something that's true, but because we don't like it, we deny it. We tell a lie.
कुछ हमारे मित्र सहकारी सच्चाई बताते हैं लेकिन हमें वह सच्चाई पसंद नहीं होती है, इसलिए हम आग बबूला हो जाते हैं और उसे नकारते हैं।
So we have to learn just to listen to criticism without getting angry.
इसलिए हमें यानी आग बबूला न होते हुए जो भी दोषारोपण है उसे हम शांतता से सुनने का प्रयास करना चाहिए।
How to stay relaxed and friendly.
कितना आसानी से हम लोग यानी मित्रतापूर्ण रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने आप की शांति बरतेंगे, इसके लिए हमने प्रयास करने की आवश्यकता है।
Then you can think about, was the criticism fair? Is it true or not true?
उसके पश्चात हम सोच सकते हैं कि जो दोषारोपण किया है क्या वह सच है या गलत है।
If it's not true, you just have to say, I don't agree, I don't think this is correct, and you don't have to worry.
जब आप शांत रहेंगे, शांति से सोचेंगे और आपको पता चलेगा कि ये दोषारोपण सही नहीं है, तब आप काफी ताकत के साथ में, शक्ति के साथ में उसे नकार सकते हैं, उसे बता सकते हैं।
And if it is true, you can say, oh, that's interesting, now I've learned something, I'll try to do something differently now.
और अगर वह सच है तो आप विनम्रता के साथ उसका स्वीकार कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि हाँ भाई ये सच है और इसे मैं स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार से गुस्सा न होते हुए आप ये कर सकते हैं।
We also need to learn to give criticism in a friendly and relaxed way.
हमने ये भी सीखना चाहिए, कभी भी मान लो आपको दोषारोपण करना है, किसी पे टीका टिप्पणी करना है, तो कैसे मैत्रीपूर्ण किया जाए?
Maitripurna, with friendliness, without any sense of aggression towards them.
किसी भी प्रकार की आक्रामक भाषा का प्रयोग न करते हुए, उत्तेजित करने वाले शब्दों का प्रयोग न करते हुए, हमारा जो टीका टिप्पणी करना जो है वह कैसे मैत्रीपूर्ण करना चाहिए, यह हमें सीखने की आवश्यकता है।
Now something else about shiel. We chant the panchashiel in negative form and then we say the positives.
अब जैसे कि लीजिए उदाहरण की तौर पर पंचशील जो है हम शुरुआत में कहते हैं नकारात्मक ढंग से, मैं ऐसा ऐसा नहीं करूंगा, उसके पश्चात हम सकारात्मक ढंग से कहते हैं कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा।
So if you want to practice Buddhism, yes, we must avoid doing bad things, but you must also remember to try to do good things.
इस तरह से बुद्ध धम्म का आचरण करने के लिए दो पद्धतियों से हम सोचते हैं। पहली पद्धति की जो गलत बातें हैं उसके बारे में हम कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, और फिर दूसरी पद्धति है जो अच्छी बातें हैं उसे मैं करूंगा, इस प्रकार से हम कहते हैं।
Especially we must try to act as if we felt corona.
खास करके यानी हमारी कृति तब होती है जब हम करुणा से भरे होते हैं।
Just think about the life of Baba Sahab. He could have retired as a lawyer, quite wealthy, quite comfortable, and saved himself a lot of trouble.
और खास करके बाबा साहब के जीवन की तरफ देखिए। बाबा साहब चाहते तो उनके जीवन में वे बहुत सारा यानी पैसा कमा सकते थे, काफी कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन ये सब न करते हुए बाबा साहब ने अपना जीवन यानी कष्ट में डाल दिया और समाज के हित के लिए काम किया।
Had a quiet life with no violence, no stealing, no telling lies, no sexual misconduct, no taking alcohol. But he wouldn't have been Baba Sahab if he hadn't gone out and helped people.
Baba Sahab agar chahte to panchashilon ka acharan karte hue apna jeevan swayam anandmay sukhmay bita sakte the. Agar maan lo aisa Baba Sahab ne matra swayam ke jeevan ki taraf dhyan diya hota to aaj ve Baba Sahab nahi ban pate the.
So this brings us to the third principle, the principle of karuna.
इसलिए यहाँ महत्वपूर्ण बात है करुणा का तत्व क्या है वो समझ लेना।
You could say the same of the Buddha's life. He could have got enlightened and just sat quietly in meditation for many years, saved himself a lot of trouble.
इस प्रकार से बुद्ध की तरफ भी हम देख सकते हैं। मान लो बुद्ध ने मतलब बोधि की प्राप्ति की, ज्ञान की प्राप्ति थी कि अगर वे स्वयं ही अपने खुद के आनंद में मतलब बने रहते थे, समाज में नहीं जाते थे, लोगों को धम्म नहीं बताते थे, तो ऐसी परिस्थिति में दुनिया उसे बुद्ध करके नहीं जानती थी।
But Buddhism's not like that. Someone who's spiritually developed, they're full of Maitri, they're full of Karuna, and they want to help.
लेकिन बुद्ध धम्म ऐसा नहीं है। जो कोई भी व्यक्ति अगर बोधि प्राप्त करता है, वो ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो मैत्री से भरा होता है, करुणा से भरा होता है और अन्य लोगों के विकास के लिए वह अपना जीवन समर्पित करता है.
So the Buddha went out, he walked the roads of India, the paths of India to meet people so he could guide them.
इसलिए भगवान बुद्ध ने बोधि प्राप्त करने के पश्चात भारत में जगह जगह वे घूमे, लोगों के पास गए, उन्होंने लोगों को धम्म बताया और लोगों के विकास के लिए उन्होंने मदद की.
The Buddha met thousands and thousands of people.
बुद्ध कई हजार लोगों से मिले.
The basic situation was he was completely happy, the Buddha, because he'd gained enlightenment.
मूलभूत बात अगर देखते हैं भगवान बुद्ध के बारे में तो भगवान बुद्ध अपने आप में पूरी तरह से आनंद से, खुशियों से, समाधान से, शांति से भरे हुए थे.
But the people he met were people like us. We have fear, we have hatred, we have confusion, we have some cravings.
जो लोग उन्हें मिलते थे, आम लोग जो मिलते थे, तो आम लोग बहुत सारी तृष्णा के शिकार होते थे, द्वेष के शिकार होते थे, लोभ के शिकार होते थे और भी समस्याओं से ग्रसित रहते थे.
So the Buddha said, you are not happy. I can help you, I can guide you to find complete happiness like I have.
बुद्ध उन्हें कहते थे कि आम आदमी के जैसे जीवन जीने में आप किस कारण से दुखी है, मैं कैसे आनंदित हूँ, मैं कैसे खुश हूँ, मेरे जैसे आनंद, मेरे जैसे खुशियाँ, मेरे जैसे शांति आप भी प्राप्त कर सकते हैं, मैं इस प्रकार से आपको मदद करना चाहता हूँ.
Of course, the Buddha didn't just help people by giving them spiritual teachings. He was very kind in an ordinary way.
बुद्ध काफी करुणा से लोगों को मदद करते थे, अच्छा जीवन जीने के लिए, सद्गुणों का विकास करने के लिए और अपना मनुष्य जीवन सुखमय बनाने के लिए.
So we must also try to help people.
इसलिए हमने भी हमारे साथ में रहने वाले लोगों को समाज में मदद करना चाहिए.
When we meet someone who's suffering, we don't always feel karuna.
जब कभी भी हम लोगों से मिलते हैं जो लोग दुखी है, तो ऐसा नहीं है कि हर समय हम करुणा से भरे रहेंगे.
We don't always feel karuna because we're not always very aware of the people we're meeting.
क्योंकि हम करुणा से हर समय भरे इसलिए नहीं रहते क्योंकि हमारे पास में जागृति का अभाव है. हम उतना जागरूक नहीं रहते, हम उतने स्मृतिमान नहीं है.
Often we're not aware of their suffering because we're just thinking about ourselves so much.
हम ज्यादा से ज्यादा स्वयं के बारे में सोचते हैं, हम स्वार्थी होते हैं, दूसरों के बारे में कम सोचते हैं, इसलिए हम करुणा से भरे नहीं रहते.
Now I'm going to tell you a little story about how karuna comes up naturally if we are aware of someone's suffering.
मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा जिससे आप समझ सकेंगे कि कैसे करुणा का विकास होता है, जैसे दुख के संपर्क में आने से करुणा कैसे विकसित होती है.
Actually, it's a story of something that happened in America, but it could easily have happened in India.
यह कहानी अमेरिका में घटी है, भारत में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है.
So, the scene for this story is a railway carriage.
ये कहानी की शुरुआत है जहाँ रेलवे का जो डिब्बा होता है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है.
It's a true story.
ये सच्ची कहानी है.
So the carriage was already quite full and it pulled in at a station.
वो जो रेलवे का डिब्बा जो होता है काफी भीड़ से भरा हुआ होता है जब वह स्टेशन पर आता है.
And a man and his two children got onto the train.
और एक आदमी और उसके दो बच्चे जो है वह उस यानी ट्रेन में बैठते हैं.
Now the man got on, he didn't smile at anyone, he just sat down silently, he seemed a little unfriendly.
तो जो आदमी होता है वह काफी शांति से बैठ जाता है, चेहरे पर उनका यानी स्माइल रहती है, हंसी रहती है और आनंद के साथ में बैठा हुआ होता है.
Now the children, they were making a lot of noise, they were running up and down the carriage, knocking into people, waking people up, making a nuisance.
लेकिन जो बच्चे होते हैं वो रेल के डिब्बे में इधर उधर काफी दौड़ते रहते हैं, लोगों को उससे तकलीफ होती है, वो डिब्बे के अंदर खेलते रहते हैं.
And slowly people got more and more angry inside the train carriage.
धीरे धीरे बच्चे की उछल कूद से लोग परेशान होते हैं, लोगों का गुस्सा बढ़ते चला जाता है.
And eventually a man went up to the person who was the father and said, look, why don't you control your children?
एक दो लोग वहाँ से उठकर वो बच्चों के पिता के पास जाते हैं और बताते हैं कि आपके बच्चे इतने यानी डिब्बे में उछल कूद कर रहे हैं, बाकी लोगों को परेशान कर रहे हैं और आप शांति से बैठे हैं, अपने बच्चों को समझाते क्यों नहीं है.
And he looks up and he says, yes, you're right, I should control them, but I have been too full of grief.
Too full?
Of grief, too much sorrow.
वो आदमी बताता है कि आपकी बात सही है कि मैंने मेरे बच्चों को बताना चाहिए कि मतलब यानी हल्ला गुल्ला न करे, लेकिन मैं स्वयं काफी दुख में हूँ.
He said, an hour before I got on the train, my wife died, that's the mother of these children, and we are in grief, we are just full of sorrow.
वो बताता है कि अभी अभी हम लोग यहाँ ट्रेन में बैठे हैं, मेरे दो बच्चे और मैं, लेकिन हम जहाँ से आ रहे हैं इस शहर से, उस शहर में अभी अभी मेरी पत्नी का देहांत हुआ है और जस्ट अभी हम आके एक डिब्बे में गाड़ी में बैठे हैं.
So when the people heard this story, they stopped feeling angry.
जब लोग ये सुनते हैं कि किस दुख में वो आदमी है, वो सुनने के पश्चात उनका गुस्सा पूरा ठंडा हो जाता है, वो समझ जाते हैं.
So we can learn quite a lot from this simple story.
तो कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत जबरदस्त ऐसा बोध जो है इस कहानी से हमें मिलता है.
Firstly, sometimes we look at people and we don't really know that they're suffering that much.
तो पहली बात ये समझिए कि जब भी हम किसी लोगों से मिलते हैं तो मात्र उसकी शक्ल से वो कितना दुखी है, उसका मन कितना दुखी है, ये समझ पाना कठिन है, हम नहीं समझ पाते हैं.
Secondly, if we understand somebody's circumstances, understand their suffering, then corona will come easily.
जब हम सामने वाले व्यक्ति की परिस्थिति अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं, उसे जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, उसके पश्चात हम सही अर्थों में उसे किस प्रकार से मदद करना चाहिए इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, तब करुणा विकसित होती है.
And thirdly, when we feel karuna, all the anger goes away.
और जब सही अर्थों में हमारे मन में करुणा उत्पन्न होती है तब हमारा गुस्सा पूरी तरह से भाग जाता है, निकल जाता है.
So the way to develop karuna is to be more aware of other people.
तो करुणा का विकास करने के लिए हमें अन्य लोगों के प्रति काफी जागरूक होने की आवश्यकता पड़ती है.
We shouldn't just see other people in terms of what we can get from them.
हम मात्र अन्य लोगों से मुझे क्या लाभ होगा ऐसे संकुचित दृष्टि से हमने नहीं देखना चाहिए.
We shouldn't just see other people in terms of whether we're scared of them or whether we're better than them.
अन्य लोगों से क्या हमें डर लगता है या उससे हम बहुत ही अच्छे हैं, ऐसी भावनाओं से हमने नहीं देखना चाहिए.
We must try to see other people as human beings just like us who have their own life.
हमने ये कोशिश करना चाहिए कि जैसे मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मेरे जैसे ही वे भी इंसान हैं, इंसान के जैसे देखने की दृष्टि हमने सीखना चाहिए.
If you can do this, you've achieved a sort of victory.
अगर ये हम कर सके तो सही अर्थों में हमारा विजय है, हमने जय हासिल की, ऐसा होगा.
This is what's necessary for India to have a good society.
यही बात भारत देश में एक नया समाज निर्माण करने की जरूरत के लिए आवश्यक बात है.
Now there's another way of thinking about corona.
एक और अन्य पद्धति से हम करुणा के बारे में सोच सकते हैं.
We can just think about the great corona of the Buddha and Baba Sahab.
हम लोग तथागत गौतम बुद्ध के और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन के बारे में सोच सकते हैं, उनके करुणा के बारे में सोच सकते हैं.
If we think about their karuna and how inspiring that was, we will naturally want to become more full of this ourselves.
बाबा साहब के जीवन के और भगवान बुद्ध के जीवन के वृत्तांत अगर हम करुणा के सुनते हैं तो उससे हमारे भीतर भी करुणा विकसित हो सकती है.
Now, at our best moments, when we feel karuna, we think, yes, it's good to help people.
और जब करुणा हमारे भीतर में विकसित होती है, वही सही समय है लोगों को मदद करने का.
Now, even if we're not feeling karuna at a particular moment, it's good to continue to try to help people all the time.
मान लो करुणा का विकास नहीं भी हुआ है, लेकिन आप जब भी आपके सामने परिस्थिति निर्माण होती है, तो उस परिस्थिति में लोगों को मदद करने का प्रयास करना चाहिए.
Now, everybody here, I'm sure there are ways that everybody here can help other people.
मुझे मतलब पक्का विश्वास है कि आप सभी लोग एक दूसरे को मदद करते होंगे.
For instance, it may be just very practical things. Maybe your neighbor has to go to hospital and you can look after her children.
हो सकता है आपका पड़ोसी है जिसे दवाखाने में ले जाने की परिस्थिति आई हो, उस समय आपने मदद की होगी.
Or maybe you have a friend who has a lot of troubles, financial problems, family problems, something like this.
ऐसी भी परिस्थिति होगी आपके दोस्तों में यानी मित्रों में कि उन्हें कठिन परिस्थितियां निर्माण हुई होगी, आर्थिक समस्या निर्माण हुई होगी, ऐसे समय में आपने उनको मदद की होगी.
So you can help them by just listening and being their friend.
तो हम हमारे मित्रों को सुनकर उनको मदद कर सकते हैं.
Then there's many people who are involved in social projects.
बहुत सारे लोग हैं जो सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं.
And through social projects, people can help hundreds and hundreds of people.
इन सामाजिक कार्यों से हम हजारों यानी लोगों को मदद कर सकते हैं.
And then the best way to help people is to share the Buddha Dhamma.
सबसे अच्छा अगर कोई रास्ता है लोगों को मदद करने का वो है बुद्ध धम्म के बारे में अन्य लोगों को बताना.
The Buddha said this is the best possible gift you can give someone.
बुद्ध कहते हैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई बात है सर्वश्रेष्ठ मदद कोई है तो अन्य लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप धम्म के बारे में बताइए धम्म की प्रेरणा दीजिए.
This was बाबा साहब's gift to us.
और यही बात बाबा साहब ने की बाबा साहब ने धम्म हमें भेंट के स्वरूप में दिया है.
The benefits are very long term.
इसके लाभ हम काफी यानी वर्षों तक इसके लाभ हमें मिलेंगे.
So you can encourage people to organize Buddhist events and help them.
इसलिए हम लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं कि बुद्ध धम्म के प्रवचन का आयोजन करने के लिए पूजा का आयोजन करने के लिए.
And also you can tell other people, you can tell your friends what you know about Buddhism.
और उसके साथ साथ आप अपने मित्रों को रिश्तेदारों को आप बुद्ध धम्म के बारे में बता सकते हैं.
You may feel you are still a beginner, but still you have something useful to tell them.
आप ये भी बता सकते हैं कि भाई मैंने अभी नई नई शुरुआत की है लेकिन मैं जितना जानता हूँ उतना मैं आपको बता रहा हूँ.
For instance, you can tell them that the Buddha was against caste.
आप बता सकते हैं कि बुद्ध जाति व्यवस्था के खिलाफ थे.
That the Buddha encouraged everybody to practice Smriti and Maitri.
बुद्ध ने हर समय प्रोत्साहन दिया मैत्री का आचरण करने के लिए स्मृतिमान बनने के लिए.
You can tell them about your own experience in finding Buddhism, your own experience in practicing.
आप अपने अनुभव से बता सकते हैं आपका स्वयं का अनुभव कैसा है अनुभव से आपको जो शांति मिली है मैत्री आप में विकसित हुई है वो आप बता सकते हैं.
Because you will have your own story to tell.
आपके पास में आपके स्वयं की कहानी हो सकती है अन्य लोगों को बताने के लिए.
And that will be inspiring to other people. If you don't exaggerate, you just tell the truth.
सच्चाई जब हम बताते हैं अन्य लोगों को उससे अपने मित्रों को और सहकारियों को प्रेरणा मिल सकती है और वो भी धम्म की तरफ आ सकते हैं.
So now I'm going to finish.
और थोड़ी देर में मैं आज का यह प्रवचन समाप्त करूंगा.
So I've got a little summary of what I've said just to help you remember.
तो आपको फिर से याद रहना चाहिए इसलिए इस प्रवचन का सारांश जो है वो मैं अभी आपको बताऊंगा.
We've had lots of distractions, so sometimes you might have missed some points.
बहुत सारी यानी जो आजू बाजू में पड़ोस में जो हल्ला गुल्ला होता है उसके कारण बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं याद नहीं रहती है.
So first of all, spiritual life begins with some prajna, some deeper understanding about life.
सबसे पहली बात है कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत समझदारी से होती है प्रज्ञा से होती है.
It may be that you understand more deeply that to be really happy you need to develop your mind and character, have a sense of direction.
सबसे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि मैं कितना आनंदित हूँ. सही अर्थों में आनंद और खुशियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे मनुष्य जीवन को उद्देश्य होना जरूरी है दिशा होना जरूरी है.
From this initial prajna, we need to continue to develop prajna.
यह शुरुआत में जो समझदारी या प्रज्ञा का विकास होता है निरंतर हम प्रयास करने से इसको गहराई में जाके विकसित कर सकते हैं उच्च स्तर की प्रज्ञा हमारे भीतर में विकसित हो सकती है.
And to continue to develop it, it's very helpful to have something like the Buddha and his Dhamma to read and think about.
और इसकी गहराई में जब जाएंगे तब जाके बुद्ध और उनका धम्म या ग्रंथ जो बाबा साहब ने दिया है उसको समझने के लिए हम सक्षम बन सकते हैं.
Don't read it all quickly. Read it slowly and think about it little bit by little bit.
बहुत तेज ऐसे किताब पढ़ने की बजाय बुद्ध और उनका धम्म जो है धीरे धीरे पढ़िए उस पर चिंतन कीजिए उसको समझने का प्रयास कीजिए इस तरह से हमारी प्रज्ञा का विकास हम कर सकते हैं.
And the more our understanding grows, the more we will want to practice shield.
जितनी गहरी हमारी समझ रहेगी प्रज्ञा रहेगी उतना हम शील के तरफ अच्छा आचरण कर पाएंगे.
If we practice shield, it will make us happy and it will benefit other people.
हम जब शील का आचरण करेंगे उससे हम लाभान्वित होंगे और इससे हम अन्य लोगों को भी लाभ दे पाएंगे मदद कर पाएंगे.
Now it's not easy to practice shield to a high standard.
ये भी बात सच है कि उच्च स्तर पर शील का आचरण करना इतना आसान नहीं है.
The practice of शील is something that needs constant attention.
शील का आचरण करने के लिए हमें निरंतर बने रहना जरूरी है, लगातार शील की जागृति बरतना जरूरी है.
But it's the very rewarding thing. It's the best way to live your life.
लेकिन शील जो है सही अर्थों में मनुष्य जीवन को आनंदित बनाता है, काफी लाभान्वित करता है. सबसे अच्छी बात अगर कोई है तो शील का आचरण करना है.
Now the practice of शील isn't just about avoiding doing bad things, it's also about doing good things.
तो शील का आचरण करना यानी जो गलत बातें नहीं करना है इतना मर्यादित नहीं है, तो उसके साथ साथ अच्छे कार्य करते रहने के लिए शील का आचरण करते रहना है.
एंड द गुड थिंग्स वी डू आर स्पेशली द थिंग्स वी डू व्हेन वी फीलिंग करुणा.
और जब खास करके करुणा निर्माण होती है तब हम शील का आचरण अच्छी तरह से कर रहे हैं, ऐसा उसको अर्थ प्राप्त हो सकता है.
And we develop karuna by being more aware of people and more aware of their suffering.
लोगों के बारे में ज्यादा हम जागरूक बनेंगे तब जाके सही अर्थों में लोगों के दुख को समझ पाएंगे और सही अर्थों में करुणा को विकसित कर पाएंगे.
And we can also be inspired by the karuna of the Buddha and Bodhisattva.
और इसके साथ साथ बुद्ध और बाबा साहब को याद करके हमारे भीतर करुणा का विकास करने के लिए हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं.